पीछे भी बेच सकते हैं कभी वास्तविक वस्तु है सुनना और सुन सकते आप लोग तो मेरे दर्शन करने के लिए नहीं आए अब राधा रमन जी राधा गोकुलनंद जी राधा गोविंद जी के दर्शन करने के लिए आए तो अगर पीछे भी बैठ सकते कोई बात नहीं अगर आप सुन सकते सुनना तो हमारा आंख है कान कान के द्वारा हम ठाकुर जी का दर्शन कर सकते हैं जगह नहीं है बहुत छोटे जगह है इसलिए दो दल में विभक्त हो गए ठीक है तो अभी हम लोग श्रील लोकनाथ गोस्वामी के समाधि के सामने बैठे हैं ये छह गोस्वामी के पहले श्री चैतन्य महाप्रभु ने लोकनाथ स्वामी ब्रज में भेजे थे तो लोकनाथ और भूगर्भ सबसे पहले आए थे और लोकनाथ गोस्वामी पूरे ब्रज में घूमते 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 एक जगह है छात्र के पास वहां पहुंच गए वहां एक शायद किशोरी कुंड का नाम का कुंड है तो जब स्नान कर रहा था उनका गमछे को कोई ऐसे कर रहा था पकड़ किंचन पानी में क्या बात हो गई तो फिर वो नीचे हाथ रखा और राधा विनोद जी का मूर्ति निकल गए तो ये मूर्ति एक जोले में डाले उनके गले में और पूरे ब्रज में राधा विनोद जी के साथ श्री विनोद जी के साथ घूमते घूमते और विनोद जी वो सारे जगह ये तो ये स्थान है ये तो ये लीला स्थान है उस सारे जितने भी स्थान था वो राधा विनोद जी ने लोकनाथ गोस्वामी को दिखा है ये है ये है ये है लोकनाथ गोस्वामी छह गोसाई से पहले थोड़ा ग्राउंड वर्क से Anyway, he did that. Or Lokanath Goswami, Chaitanya Mahaprabhu, jaisa hum kya naam Rupa Goswami ke bare mein baat ki hai ki do bar Mahaprabhu Rupa Goswami ke bare mein bole the. To Mahaprabhu do bar Narottam Das Thakur ke bare mein bhi bole. एक बार खिचुड़ी ग्राम में कीर्तन चल रहा था वो खिचुड़ी ग्राम के पास वो नदी पद्म नदी के उस पार और महाप्रभु अचानक से नरोत्तम 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 गाने लगे सुनने तो दस रुपये बहुत आश्चर्य लगी है क्या बात है शायद कोई बड़ी बड़ी बात यहाँ है तो महाप्रभु के पास पहुंचे और पूछे और महाप्रभु बोले नहीं अभी नहीं है आने वाले हैं इस फदमंदारे के उस पर खेचोरी ग्राम में मेरा परम भक्त नरोत्तम दास ठाकुर आने वाला है तो दूसरी बार जब लोकनाथ गोस्वामी को ब्रज में भेजे थे तो फिर लोकनाथ गोस्वामी को बोला कि मेरा परम भक्त नरोत्तम दास ठाकुर आने वाले हैं और जब ब्रज में आते हैं इनको दीक्षा दिलाना है दो बार महाप्रभु नरोत्तम दास ठाकुर के बारे में बोले थे उसका भविष्यवाणी और किसी के बारे में भविष्यवाणी नहीं की लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर के बारे में दो बार महाप्रभु भविष्यवाणी की थी एक तो लोकनाथ गोस्वामी तभी हम दर्शन करेंगे क्योंकि अभी तो शायद बंद होने वाले हैं तो दर्शन करके तो वहां मंदिर में बैठकर हम और सुनेंगे नारतम और Lokanath Goswami or ye to Narottam Das Thakur ke somebody, koi chor aaya, uska jo prachin somebody the, wo le gaye. Ek hamare Achyuta Prabhu, Prabhupada ji ke somebody jo in charge the, unhone phir bhi uska jirnodar kiya, aur bagal mein ye piche wale ye to Biswanath Chakravarti Thakur ke somebody mein le. तो ये तो लोकनाथ गोस्वामी का समाधि में है. अभी हम राधा गोकुलानंद और राधा विनोद जी राधा विजय गोविंदा और महाप्रभु का दर्शन करेंगे.
हरि बोल प्रभु. हरि बोल.
हाय हाय हाय.
सो यही राधा गोकुलानंद जी मंदिर और ये बहुत छोटी छोटी ठाकुर जी तो छोटे हो सकते हैं लेकिन फिर भी हम लोग परसों ब्रह्मांड नगर जाएंगे और देखेंगे तो ये छोटी छोटी ठाकुर जी इसका पूरा मुंह में पूरा ब्रह्मांड होते हैं. तो छोटे मत समझ लीजिए लेकिन ये छोटे ठाकुर जी ये तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के गोकुलानंद जी है और जो हमारे बाएं हाथ में ये लोकनाथ गोस्वामी के राधा विनोद जी महाराज और हमारा दाएं तरफ ये जो बालदेव विजयभूषण का विजय गोविंद जी महाराज और जो हमारा पूरा भाई में ये नारोत्तम दास ठाकुर का गौरंग महाप्रभु और पूरा बीच में आप छोटे सा आसन देख सकते हैं. यह है बहुत छोटा गिरिराज शिला है और इस गिरिराज शिला चैतन्य महाप्रभु वो उसके ऊपर जाप करते थे ऐसे करते थे चीं, 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 हरे
कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे.
सो व्हाट डू यू कॉल रबिंग इन हिंदी रबिंग हाथ घिसते थे इस ये गिरिराज शिला के ऊपर और महाप्रभु का अंगोटा का चिन्ह इस शिला में है. अब कभी आएंगे छोटे छोटे ग्रुपों में तो 10 दिन में है तो कोई शाम को यह नहीं है और हमारा नीताई बाबा बहुत साल से बहुत सुंदर आप देख सकते हैं बहुत स्वच्छ और सुंदर सेवा वो ठाकुर जी को कर रहे हैं. वो आपको ये गिरिराज शिला जिसमें चैतन्य महाप्रभु का अंगूठा चिन्ह चिन्ह इसमें है आप देख सकते हैं. तो ये राधा विनोद जी जैसे हमने बताया था ये लोकनाथ गोस्वामी के मूर्ति श्री विग्रह है और लोकनाथ गोस्वामी इतना नम्र वैष्णव थे वो किसी से कभी सेवा नहीं लेते थे किसी से. वो केवल वैष्णव का सेवा करना चाहते थे और किसी से सेवा नहीं लेना चाहते थे और वो भी एक व्रत उसका वचन दिया प्रतिज्ञा किया कि मैं किसी को दीक्षा नहीं देंगे. मुझे तो हम ये फॉलोअर्स शिष्य लोग हम नहीं चाहिए कि सब लोग मेरी सेवा करेंगे और मेरा की जाय करेंगे ये सब इसमें नहीं फंस जाएंगे. एक भी शिष्य के पास नहीं था. तो फिर जब नारोत्तम दास ठाकुर ब्रज में आए थे वो जीव गोस्वामी से शिक्षा लेते थे लेकिन लोकनाथ गोस्वामी के सुंदर सुंदर स्वभाव देखकर वो बहुत मोहित आकर्षित हो गए हैं. तो वो लोकनाथ गोस्वामी अपने गुरु के रूप में बनाना चाहते थे लेकिन लोकनाथ गोस्वामी का व्रत था मैं किसी को शिष्य नहीं बनाएंगे. टाइम इज अप. कोई उनको बता सकते कि पहले समाधि के दर्शन करो.
कीर्तन
तो कोई बात नहीं. तो फिर नारोत्तम वो अपने हृदय में वो स्वीकार किया कि लोकनाथ गोस्वामी मेरे गुरु है, उनसे दीक्षा मांगा, लेकिन नहीं 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 हम देंगे, हम किसी को नहीं देंगे। तो फिर कुछ सेवा, मैं तो आपको गुरु के रूप में स्वीकार किया, तो मुझे कुछ ना 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 हम किसी से सेवा नहीं लेंगे। नारोत्तम दास क्या करूँ, तो फिर ये जालियों में वो छिप गए और उनके दैनिक कार्यक्रम वो देखते थे, वो देखते सुबह सुबह एक स्थान पे उनके दैनिक कार्यक्रम करते थे। तो नारोत्तम एक बाल्टी और झाड़ू लाया और जब लोकनाथ गोस्वामी गए वो सब ये स्थान साफ कर दिया। तो फिर ये तो एक साल तक चलते रहा। फिर एक दिन लोकनाथ गोस्वामी ने सोचे कि हमें रोज ये नहाते थे और रोज ये स्थान तो साफ है, क्या बात है। तो फिर वो भी जाड़ियों में चुप गए और देखे कि नारोत्तम दास ठाकुर आए जाड़ू और बाल्टी लेके और ये स्थान साफ है। अरे तुम क्या कर रहे हो? अरे महाराज, मैं तो आपको गुरु के रूप में स्वीकार किया, तो गुरु का सेवा करना चाहिए, तो तुम मुझे मौके नहीं दिया, तो मैं किसी प्रकार ये मौके मिले। तो लोकनाथ गोस्वामी के हृदय पिघल गए, ठीक है तो मैं अभी आपको दीक्षा दे देंगे। तो लोकनाथ स्वामी के एकमात्र शिष्य है नारोत्तम दास ठाकुर, क्योंकि वो याद किया चैतन्य महाप्रभु ने, मेरा प्रतिज्ञा है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु मुझे बताया था कि जो नारोत्तम आते हैं उनको दीक्षा देना है। श्री नारोत्तम दास ठाकुर की, श्री लोकनाथ गोस्वामी पार की,
तो फिर
जाने तो ये गोकुलानंद जी, ये तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, हम लोग इनका भजन रोज मंगल आरती के समय करते हैं। संसार दावा नालाली दावा ये गुरुवस्तक और विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद के द्वारा रचित है और बहुत से ग्रंथ, जैसे हमने अंग्रेजी भाषा में ये माधुर्य कदम्बनी का अनुवाद किए थे, बहुत ही सुंदर ग्रंथ। जो भी जितने भी तकलीफ है भक्ति के लाइन में, भक्ति के मार्ग में, सब कुछ है और जो क्या फल मिलेंगे जब हम वहां कृष्ण प्रेम में पहुंचेंगे, सब श्रद्धा से कृष्ण प्रेम तक। और फिर इनके शिष्य थे बालदेव विजयभूषण। तो बालदेव विजयभूषण उस समय आप जानते कि जयपुर में कुछ चुनौती हुआ और संप्रदाय बोले कि क्यों गोविंद देव का आरती खोलते हैं हमारा ठाकुर जी के पायले, इन लोगों का कोई संप्रदाय नहीं है तो कैसे उसका पूजा कर सकते हैं। तो फिर जब पूछे कि आपका कोई वेदांत का भाष्य है, नहीं तो कोई महाप्रभु बोले कि श्रीमद् भागवत ये तो प्राकृतिक भाष्य है, ये व्यास देव के द्वारा भाष्य है, नहीं 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 कोई भाष्य होना चाहिए। तो इस समय विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वो तो सब वैष्णव का चक्रवर्ती भक्त थे, सब वैष्णव का, लेकिन वो तो वृद्ध वैष्णव थे, वो नहीं जा सकते थे जयपुर, तो वो बालदेव विजयभूषण को भेजे और बालदेव विजयभूषण बोले कि हम बनाएंगे एक भाषण। और 7 दिन के अंदर विजय गोविंद ने, इसलिए गोविंद राष्ट्र से नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि गोविंद जी अपने मुख अरविंद से ये पूरा भाष्य सुनाए बालदेव विजयभूषण और बालदेव विजयभूषण 7 दिन में ये गोविंद भाष्य बनाए। 7 दिन का कोई नहीं बना सकते वेदांत के ऊपर कोई भाष्य, शंकराचार्य भी कोई 7 दिन में नहीं बनाया, लेकिन 7 दिन के अंदर जब वो महाराज के सामने प्रस्तुत किए सब पंडित को वो भी एकदम आश्चर्यजनक हो गया। और फिर बोले ठीक है, इनका इनके संप्रदाय तो है तो ठीक है, तो आप
राधा गोविंद जी की पूजा कर सकते हैं। तो ये बिजाई, क्योंकि वो बिजाई किया बिजाई कराया, तो ये बिजाई राधा बिजाई गोविंद। और ये गोविंद गिरिराज शिला जैसा हमने बताया था महाप्रभु, उसका इसके ऊपर उंगली घिसता उनके चिन्ह है इसमें। बोलो गिरिराज महाराज की। तो जो कोई डोनेशन देना चाहते हैं तो निताई बाबा बहुत सुंदर सेवा करते हैं, आप देख सकते हैं। तो ठाकुर जी के सेवा में कुछ दान दे सकते हैं। और अभी हम लोग वो, क्योंकि वो भी बंद होने वाले हैं, तो हम लोग राधा रमन जी का मंदिर जाएंगे। तो ये अब मुख्य द्वार से बाहर चलो, हम लोग तो लेफ्ट विंगर्स अंदर आ जाइए, पीछे भी बैठ सकते हैं, वहां भी पीछे भी बैठ सकते हैं,
ऊपर चढ़ के पीछे बैठे तो बस।
और जो
माताएं उसमें चल
रमन लाल जी महाराज की, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पार की। तो जैसे आजकल चतुर्मास चल रहा है, और असली चतुर्मास चल रहा है तो चैतन्य महाप्रभु ये जो कावेरी नदी के बीच में रंग क्षेत्र में जहां रंगनाथ का मंदिर है, चतुर्मास के एक दिन पहले वहां मंदिर में बहुत सुंदर प्रेम वर्ष में कीर्तन कर रहा था। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे। और सब लोग बोरस चार्ज, सब लोग उनको बोरस चार्ज लगे ये सन्यासी को प्रेम वर्ष में कीर्तन करके देखकर। तो वेंकट भट्ट जो उस मंदिर का मुख्य पुजारी थे, उसने था कि कोई भी चित्र भाट हो रहा है मंदिर में, और वहां आकर वो भी देखा कि बहुत सुंदर सन्यासी है, खूब सुंदर हरे कृष्णा 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 हरे हरे वो भी नाचने लगे। वो तो अक्सर में मंदिर में आते प्रणाम करते थे, लेकिन वो भी प्रेमवश में नाचने करने लगे। तो फिर चैतन्य महाप्रभु को निमंत्रण किया कि महाराज मेरा गांव का पधारिए, उसको पवित्र कर दीजिए। और फिर अगले दिन वो बोले कि महाराज अभी चतुर्मास शुरू हो गया, अभी तो बारिश होगा, बहुत खींच होंगे रास्ते में, अब तो ये हैं चार महीना रहना चाहिए। और चैतन्य बाबू किसी घर पर केवल तीन दिन रहते थे, लेकिन वो तो चतुर्मास था, तो चार महीने वहां वेंकट भट्ट के संग में रहे। और उस समय वेंकट भट्ट के छोटा बालक था गोपाल भट्ट। तो गोपाल भट्ट चार महीने श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में शिक्षा लिए थे। और जब ये चतुर्मास से खत्म हो गया, तो महाप्रभु गोपाल भट्ट को बोले कि आप यहां रहो, आपका माता पिता की सेवा करो, लेकिन एक बात है कि आपका माता पिता आपका शादी करवाना चाहते हैं, लेकिन कभी शादी मत करो लेकिन जब तक जीवित है उनके सेवा करो, और जब फजार जाते हैं तो फिर वृंदावन में आ जाइए। तो ऐसे किया था गोपाल भट्ट, फिर वृंदावन में आए थे। और वो भी उस समय जब आए चैतन्य महाप्रभु वृंदावन से, वो चले गए, तो उनके पीछे जाना चाहते थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु का आदेश था कि हम ब्रज में रहो। तो यह बहुत समय रहते थे, कभी कभी रूप गोस्वामी, कभी सनातन गोस्वामी वो पूरी गए थे, कभी कभी महाप्रभु एक पत्र भेजते थे कि रूप गोस्वामी तो आना चाहिए, सनातन गोस्वामी आना चाहिए, ये आना चाहिए। तो कभी कोई पत्र नहीं मिले तो वो सनातन गोस्वामी के पास एक पत्र भेजे कि मुझे कोई निमंत्रण नहीं मिलते। महाप्रभु उनके सनातन गोस्वामी के साथ उनके जो चौकी थे जिसके महाप्रभु स्वयं देते थे, जो बाहर वेश था कपड़ा वस्त्र वो भी सनातन गोस्वामी के साथ भेजा था। बोले कि आप ब्रज में रहो और ये कपड़ा और ये चौकी ये वो मुझसे अभिन्न नहीं है, इसका पूजा कीजिए, ये मुझसे अभिन्न नहीं। तो वो कभी गए नहीं, कभी महाप्रभु के पास तो कभी गए नहीं, कि वो चार महीने महाप्रभु के चरणों में बैठकर शिक्षा लिया था। जब चैतन्य महाप्रभु का लीला समाप्त हो चुके हैं, गोपाल भट्ट गोस्वामी बिल्कुल हजी से वो तो रोने लगे विराह में, विराह दिन में आए। तो उस समय उनको भी ब्रज रहने के उनको भी अच्छा नहीं लगता कि चैतन्य महाप्रभु तो चले गए, हम उसके दर्शन कभी नहीं किए। तो वो निश्चय किया कि हम गंडकी नदी के पास जाएंगे नेपाल में, वहां दर्शन करेंगे मुक्तिनाथ और वापस आएंगे। तो मुक्तिनाथ जाकर एक दिन वो स्नान कर रहे उसका लोटा पानी में डाला और देखा कि बोसे बोसी शालग्राम से, तो फिर वापस नदी में डाला, फिर भी देखे कि शालग्राम, फिर भी इंद्र लोटे में आए। और तीसरी बार और जब देखे कि इनके लोटे में ये सब शालग्राम है, तो ये तो तीन बार है, ये तो कोई विचित्र बार है, ये कोई ठाकुर जी का लीला है। सो ये सारे लीला उनके साथ ये हम वापस लाए थे। इसमें बहुत एक बहुत सुंदर शायद दामोदर शिला था, बहुत ही सुंदर उसका पूजा, ये सारे शिला का पूजा करते। जिस समय कोई मंदिर नहीं था, वो केवल एक जोले में ये वृक्ष, वहां एक स्थान है बाहर जहां वो जोले में रखते थे और उनका पूजा करते थे। एक बार मशीनी ठाकुर दास ही आए हैं, वो श्रीमद भागवतम का पाठ किया, ये प्रहलाद महाराज नृसिंह देव के प्रसंग। और एक आदमी उस समय एक आदमी आए थे, बोले कि महाराज मैं तो जितने भी ठाकुर जी हैं मैं उनको मुकुट और पोशाक और ये सब बांधती। और गोपाल भट्ट बोले कि मेरे पास कोई मेरे केवल शिला है, उसके कोई मुकुट और बांधती और कोई पोशाक नहीं, कब आवश्यक नहीं। तो फिर उनका हृदय में थोड़ा दुख लगे कि और वो सब गोस्वामी वो मुकुट रखते हैं, बंसी रखते हैं, ये पोशाक बनाते हैं। तो फिर ये प्रहलाद महाराज के प्रसंग स्मरण करके वो बोले कि महाराज प्रभु जैसा आप एक फाशन से, एक फाशन का खंभे से आप प्रकट हो गए थे प्रहलाद महाराज को रक्षित करने के लिए, सो मेरे प्राण रक्षित कीजिए, मेरे प्राण का रक्षित कीजिए। सो गए। तो फिर सुबह जब उठे थे उनके जोले खोल दिए और देखा इस जोले में ये दामोदर शिला नहीं है, इनके स्थान पे बहुत ही विचित्र सुंदर सुंदर अति सुंदर शिव विग्रह है, ये राधा रमन, बहुत ही सुंदर। आप किसी का हाथ से नहीं बन सकते, मैं तो ये स्पाई ग्लासेस से देख रही उसका नाखून भी देख सकते हैं, उसका भाव के नारे सब कुछ, इनका हाथ में इतना छोटे छोटे स्थान है बंसी रखने के लिए कि ये बंसी नहीं रखते कि उनका भाई है कि शायद उसका अंगुली टूट जाएगी, इतनी छोटी छोटी कोई नहीं बना सकते, ये तो स्वयं प्रकट ठाकुर जी है और ये प्राचीन ठाकुर जी है। और सब ठाकुर जी तो जयपुर करौली सब जगह में गए थे, लेकिन जो उनका पूजा करते थे वो स्वयं राजस्थान में गए थे और किसी राजा को बोला कि हम राजा का पैसे नहीं लेंगे, ये तो सब किसी प्रकार टैक्स लेके लोगों को बहुत तकलीफ देते, तो हम इस पैसे से हम हमारा ठाकुर जी के पूछे जो कुछ मिलते हम ठाकुर जी, तो किसी राजा का अधीन नहीं था। तो जब वृंदावन सेफ सुरक्षित हो गए तो राधारमण जी यहां वापस लाए थे। तो ये तो प्राचीन मूर्ति है राधारमण जी, बहुत ही सुंदर। जब वो प्रकट हो गए तो सब गोस्वामीगण आए थे, उसके दर्शन करके सब लोग उनको विमोहित हो गए थे और सब लोग बोले कि ये तीन ठाकुर एक ही विग्रह में है। ये मदन मोहन जी का जो खतिस्तान से भाव थक छायण थक और गोपीनाथ का वक्षस्थल और गोविंद देव का मुख चंद्र वो एक ही ठाकुर जी में है, एक ही ठाकुर जी में। इतने सुंदर राधारमण जी का अति सुंदर, हम उसका वर्णन नहीं कर सकते। अभी हम स्वयं दर्शन करेंगे तो ये स्वयं प्रकट मूर्ति है, किसी का हाथ से नहीं बना है। आप देख सकते हैं कि कोई ऐसा डिटेल नहीं बना सकते। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी उनके पूजा करते थे। जब नेपाल गए थे वो रास्ते में सहारनपुर के पास कोई ब्राह्मण उनका एक लड़का उनके साथ भेजा था। अभी इसके शायद ये दामोदर गोस्वामी था, गोपीनाथ गोस्वामी थे। सो गोपीनाथ गोस्वामी वो इतना आकर्षण हुए तो वो गोपाल भट्ट जी की वृंदावन तक आए थे, वो उनका पिता जी के घर वापस नहीं गए, वृंदावन तक उनके शिष्य बन गए। और फिर जब गोपाल भट्ट वृद्धावस्था में था वो बोले कि आप शादी करो और आपका परिवार इनका ये ठाकुर जी का पूजा करेंगे। और गोपीनाथ बोलो नहीं नहीं नहीं, हम नहीं फंस जाएंगे इसमें। लेकिन मेरा दामोदर का भाई है वो गृहस्थ है तो हम उनको बुलाएंगे। तो दामोदर गोस्वामी यहां आए और ठाकुर जी की सेवा संभाल लिया और उनके जो वंशज है आज काल भी इनका पूजा करते थे। इनके चार जिसे चार वंश थे, उनके चार पुत्र थे, जो चार वंश थे। तो सब लोग तो छह महीने ऐसा प्रणाली से उनका पूजा करते थे। और जितने भी जो विभाजन है तो ये छह महीने का उनका विभाजन भी करते हैं। लेकिन एक लाइन है जो केवल एक ही पुत्र है इसके लाइन ची 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 सब के पास सारे ये पूरे छह महीने इनके हैं। तो ठीक है, इसी प्रकार ठाकुर जी के सेवा बहुत सुंदर चल रहे थे। पर ये हम बंसी गोपाल में मंदिर रहते थे और ये सब राधारमण जी गोस्वामी से बहुत संपर्क और उनके साथ विचार भी करते थे। विशेष रूप हमारे विश्वामित्र गोस्वामी प्रभुपाद जी के बहुत प्रिय मित्र थे। अभी इनके दोनों पुत्र यहन पूजा करते हैं, पद्मलोचन और पद्मनाभ गोस्वामी। और अभी हम तो बहुत लोग हैं पीछे, हम बताएंगे पीछे गोपाल भट्ट गोस्वामी के सनमारी मंदिर है और बिल्कुल मंदिर के बिल्कुल पीछे ये राधारमण जी का प्रकट स्थान है। प्रभु हमेशा बताते थे कि यह जो पूजा प्रणाली है ये बहुत शुद्ध है, बहुत ऊंचा स्तर है।